संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचरे हमारे ध्यान। चौदहवीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें कहा गया है कि अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त इन भावों से जो आत्मा पहचाना जाता है वह आत्मा ही उस आत्मा को जानने वाले ज्ञान के अंश का नाम है शुद्ध न्याय। का जो कल तीन पंक्तियां चली थी ना गाथा की टीका थी, उसने ये बात कही थी कि ये शुद्ध न्याय और अनुभूति और आत्मा एक ही चीज है। एक तरह से भी ऐसा था कि शुद्ध ने आत्मिकाया जिसे शुद्ध ने आत्मा ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। जब कलश भी आता है शायद इसके बाद ही आएगा, आप में पढ़ेंगे तो तीनों एक ही हैं। तो फिर कृष्ण ने प्रश्न किया कि आपने बताया कि ऐसा भगवान आत्मा है, लेकिन हमें तो एक बराबर कर्मों में फंसा हुआ, मनुष्यदि परिणामों में उलझा हुआ, निरंतर रागादि भावों से संयुक्त ऐसा भगवान आत्मा देखने में आता है। तो जैसे आत्मा की बात तुम कर रहे हो उस आत्मा की अनुभूति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है तो कैसे हो सकती है? जो पानी है, अब अगर पानी स्वभाव से निर्मल है लेकिन अब अभी तो वर्तमान में भी मैला है, अब उस निर्मल पानी को हम कैसे पिए? उसकी अभी उसमें निर्मलता का अनुभव करने का कोई उपाय है? ये उपाय तो बहुत लोग बताएंगे। कौन से उपाय? कैसे फटकरी डाल दो, निर्मली डाल दो तो नल अंदर बैठ जाएगा, है ना? और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए पानी के साफ करने के, क्यों? और वो जो पानी हमको फ्री में मिलता था और एक किलो 10 रुपए में 20 रुपए में मिलने लग गया है, कभी हमने 10 रुपए किलो का घी भी नहीं खाया था, क्यों? और वो पानी भी उस भाव में हम पी रहे हैं। तो वो पानी को साफ कैसे करना, इसके प्रोजेक्ट तो बहुत है, लेकिन वो पानी अभी मैला है और उसे निर्मल देखना ये कैसे संभव है? तो भैया यदि वो संभव नहीं होता तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते नहीं। यदि उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि ये जो मैला पानी है और उससे हम बिल्कुल ऐसा निर्मल पानी बना लेंगे तो ये करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट क्यों लगते? बोलो, जो मैले पानी में उसने निर्मल पानी देखा या नहीं देखा? उन्होंने ये तर्क दिया कि वो निर्मल आत्मा की अनुभूति हो सकती है क्योंकि ये बद्ध स्पष्टादि भाव हैं, वे अभूतार। तो इसकी पंक्ति है जब बनने तो प्रश्न ये है ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? उत्तर है कि बद्ध स्पष्टादि भावों के अभूतार्थ होने से अनुभूति हो सकती है। अब इसी बात को 5 दृष्टांतों के द्वारा विस्तार से समझाते हैं कैसे हो सकती है। लेकिन एक जवाब तो आ गया जी, ये जो बद्ध स्पष्टादि भाव हैं ये अभूतार्थ। देखो इतना थोड़ा सा विवेक रखना कि अबद्ध स्पष्ट और बद्ध स्पष्ट, तो हम अबद्ध स्पष्ट बोलते हैं तब बिल्कुल अलग बात होती है, बद्ध स्पष्ट में इसका भेद रखना। आत्मा कर्मों से बंधा है, उसने जकड़ रखा है चारों तरफ से, बिल्कुल इतनी भी गुंजाइश नहीं है, ख्याल में है ना, सांध नहीं है, इस तरह से जकड़ रखा है, इसका नाम है बद्ध स्पष्ट। और आत्मा अन्य अन्य है, और आत्मा सद्गुणी हानि वृद्धि से सहज है, और आत्मा रागादि से मेला कुचैला है, इसका नाम है बद्ध स्पष्टादि भाव। और कर्मों ने छुआ तक नहीं है, बंधा नहीं है, राग द्वेष मोह नहीं है, और इसमें मनुष्यादि पर्यायों में बता हुआ नहीं है, अलग अलग नहीं है, सदगुणी हानि वृद्धि से चंचल जो होते ना वो भी इसमें नहीं है, गुण भेद भी नहीं है। ऐसे आत्मा को बोलते अबद्ध स्पष्टादि स्वभाव वाला आत्मा। जो दो नाम होंगे, बद्ध स्पष्टादि एक अबद्ध स्पष्टादि। अब बार बार इतने ही बोलेंगे, अब वो पांच एक साथ नहीं बोलेंगे, पांच तुम समझना। हम बोले बद्ध स्पष्टादि बाद तो आत्मा बंधा है आदि, समझे ना। अबद्ध स्पष्टादि बोले तो ए पांच समझ। तो उन्होंने कहा कि वो अबद्ध स्पष्ट आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है जबकि वो बंधा भी है। वो भी बात है ना। तो उन्होंने कहा कि वो बात अभूतार्थ है इसलिए हो सकता है। यदि वो अभूतार्थ नहीं होती तो नहीं हो सकता था। ये अभूतार्थ क्या होता है? ये अभूतार्थ में ये साथ भी मैं हमारे साथ तकलीफ हुई। अभूतार्थ का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया तो हमने कह दिया असत्यार्थ। तो असत्यार्थ और अभूतार्थ हमको वैसे लग रहे स्वापनाथ वैसे नागनाथ, शब्द बदल गया लेकिन उसका भाव हमारे ख्याल में नहीं आया। तो फिर हमने अपनी देसी भाषा में बोल दिया कि वे झूठे हैं। आप सुने, अब बस उस झूठे से हमें जैसा झूठे का अर्थ लोग में समझते हैं वो हमने ऐसे ही मान लिया कि गधे के सिर पर सींग है ये बात झूठी है। ऐसे बद्ध स्पष्टादि भाव ऐसे ही झूठे हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसे झूठे नहीं है। मैंने हमेशा तकलीफ क्या हुई समझ में आया ना। एक अंधे व्यक्ति ने पूछा कि कहा किसी ने कि सूरदास जी खीर खाओगे? मैं तो खीर कभी देखी नहीं, तो मैं अभी कैसे कह सकता हूँ कि खीर खा सकता हूँ कि नहीं खाऊंगा? आप बताओ मुझे खीर कैसी होती है। तो उन्होंने कहा एकदम सफेद दूध जैसी। तो मैंने दूध भी नहीं देखा, जन्मांध था ना। ये शास्त्र का उदाहरण है, मेरी तरफ से नहीं है। कि जन्मांध व्यक्ति ने जिसने सफेद लाल रंग का कभी जाना ही नहीं क्या होता है और उससे कहा खाने है ना तो कैसे सफेद होती है, तो उसने सफेद कैसी? अब वो पंडित फिर घबराया तो उसने कहा सफेद बगुला जैसी। उसने फिर कोई सफेद बगुला होता है ना जैसा, तो उसने बगुला भी कहां देखा था? तो उसे सांपनाथ नागनाथ एक सही हो गया ना। तो कभी ये मेरी समझ में नहीं आता कैसा होता है बगुला। तो उन्होंने कहा बगुला कैसा होता है? तो उसने ऐसा बताया, मैंने देखने तो हाथ ऐसे करके ऐसे 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 देखा उसने दो तीन बार, बोले नहीं खाऊंगा। तो क्यों? मेरे गले में ऐसी टेढ़ी खीर कैसे डाल दी? आपने सुनी होगी तेरी बात तो बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का जो फ्रेज है वो इस उदाहरण से बना है। टेढ़ी खीर मैंने समझ में आया ना कि मैं नहीं खाऊंगा। तो भाई अब अंधे को जो तुम कलर से समझाओगे तो ऐसे ही होगा। तो कलर तो समझता ही नहीं है ना। और फिर बगला समझाया तो बगला को आकार से समझाओगे तो आकार भी तो उसने नहीं देखा। जैसे कलर नहीं देखा ऐसा आकार नहीं देखा, वो तो स्पर्श करके देखेगा। तो ऐसे ही हमारा ये अभूतार्थ झूठा लाल हो गया और इससे बहुत तकलीफें खड़ी हमारी समाज में हुई। ख्याल में ना, हम अभूतार्थ कहते रहते कोई कुछ नहीं कहता, हम असत्यार्थ कहते रहते कोई कुछ नहीं कहता। ख्याल में है ना। और जब हमने उसे झूठा लाल कहना शुरू किया तो झगड़ा खत्म। लेकिन वास्तव में उसमें भाव में भी फर्क है। ऐसा नहीं है तेरे भाव में ही फर्क है और हमने हिंदी में बोल दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो उदाहरण से समझाएंगे तो उसमें ये लिखा है कि भूतार्थ भी है, सर्वथा अभूतार्थ नहीं है। अब समझ में आए ना। और वहां तो अपन ने सर्वथा के अर्थ में प्रयोग कर दिया, गधे के सिर के सींग पर सींग है, ये तो सर्वथा अभूतार्थ है, वो तो है ही नहीं। और ये ऐसा तो नहीं है तो कैसा है अभी बताएंगे। ख्याल में ना। अब वास्तव में वो जो कौन सी कहता है ग्यारहवीं है ना, व्यवहार भूमियत्व भूयत्व ग्यारहवीं और फिर बारहवीं गाथा। तो बारहवीं गाथा की टीका में मैंने बहुत विस्तार से इस बात को लिखी है
टीका में मैंने अनुशीलन में मिलेगी, टीका में कम मिलेगा तो उसमें भूत माने होता है होना। भूत से भूत भी होते हैं, वे भी भूत होते हैं, और भूत माने प्राणी भी होता है, संसारी जीव को भी भूत बोलते हैं, और गंतर देव में भी एक भूत होते हैं, और एक भूत का अर्थ होना भी होता है, तीन अर्थ हो गए भूत के। एक लोग गंतरों में भूत हैं, वो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं भूत प्रेत ख्याल में, और दूसरे तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है भूत वृत्तनुकंपादान स्वराज सिंह, तो भूत माने जगत संसारी प्राणी, उन पर अनुकंपा करना, और वृत्ति तो वृत्तियों का सम्मान करना खल में ना, तो ये वहां भूत शब्द का अर्थ प्राणी लिया। प्राणी संसारी प्राणी क्यों, सिद्ध क्यों नहीं, इसलिए जो करुणा के पात्र हैं, अब सिद्ध को कोई दुख ही नहीं है तो करुणा कैसे आएगी, उन्हें देख के हमें दया आनी चाहिए ना, क्यों तो दया के पात्र तो कोई दुखी भी होंगे। फिर मेरे को ऐसा बात आ गया, भैया करुणा आ गई तो मैंने 500 रुपए दे दिए, किसको दे दिए, एक अरबपति को दे दिए, रिलायंस को दे दिए, क्यों तो हम लोग हंसेंगे, क्या बात करते हो। तो करुणा के पात्र कौन है, जो दुखी है, इसलिए भूत माने संसारी प्राणी। अब यहाँ इन दोनों का यह अर्थ नहीं है, तो यहाँ क्या अर्थ है कि भू एक धातु है, संस्कृत जो लोग जानते हैं थोड़ी बहुत, और जो उसका अर्थ होता है होना, ऐसा मतलब भगवती मैंने होता है, तो भू धातु होने के अर्थ में है, तो जो है उसका नाम है भूत है, तो सारी दुनिया भूत हो गई, माने छह द्रव्य भूत हो गए, पर उनका अस्तित्व होना चाहिए, जिसमें अस्तित्व गुण है वो उन सब का नाम है भूत है ना, जो है उसका नाम भूत। अब भूतार्थ अर्थ माने पदार्थ, कि जो पदार्थ है उसका नाम है भूतार्थ, और अभूतार्थ जो पदार्थ नहीं है उसका नाम है अभूतार्थ। तथा भूतम अर्थम प्रद्योदति इति भूतार्था, कि जो है पदार्थ उसको बताए उसे भूतार्थ कहते हैं, तो जो नए जो पदार्थ है उसको जाने भूतार्थ नए कहते हैं, खल में ना। अब ये देखिए कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रयोजन भूत शब्द आता है बार बार, छड़ला में भी आता ना, जीवादि प्रयोजन भूत आता ना, तो इस प्रयोजन भूत और भूतार्थ इन दोनों का एक अर्थ है, सिर्फ स्थान चेंज हो गया है। स्थान चेंज माने भूत माने अर्थ माने पदार्थ, और समझे ना, और प्रयोजन अर्थ माने प्रयोजन और भूत माने पदार्थ, तो प्रयोजन भूत, तो प्रयोजन भूत का भूत कर दो पहले और प्रयोजन करो बाद में, और उसका पर्यायवाची लगाओ अर्थ, तो भूत अर्थ हो गया ना, तो क्या नाम भूत, तो इसका अर्थ प्रयोजन भूत पदार्थ वो है भूतार्थ। बाकी कोई पदार्थ भूतार्थ नहीं है, भूतार्थ नहीं है माने प्रयोजन भूत नहीं है, हमारे काम के नहीं है, तो अभी जो पदार्थ बिल्कुल नहीं है उनको भी अभूतार्थ कहते हैं, और जो हमारे काम के नहीं है उन्हें भी अभूतार्थ कहते हैं, और ऐसे प्रयोग लोक में भी बहुत होते हैं। क्यों, जैसे कि आप अपने घर में जाते हैं और दरवाजा खटखटाए तो अंदर से आवाज आए, कौन, क्या जवाब देते हैं, कोई, क्या, तो आप कोई नहीं होंगे, क्या बोली, आप घर में प्रवेश किया कुछ किया तो वो कौन आवाज, आप कोई नहीं बोलते ना, क्यों नहीं बताते हैं मैं दीपचंद हूं, क्यों नहीं बोलते ना, कोई नहीं माने बाहर का कोई नहीं, जिसकी तुम्हारे चित्त में चिंता खड़ी हुई है तो कोई आ गया, समझिए ना, ऐसा आदमी कोई नहीं। तो उसके अर्थ में हम कोई नहीं बोलते कि नहीं बोलते हैं, समझिए ना, कि तुम चिंता मत करो, ऐसा बाहर का कोई आदमी नहीं आया। तो ऐसे ही बोलते हैं कि जो चीज हमारे काम की है उसे बोलते हैं प्रयोजनभूत, और जो चीज हमारे काम की नहीं है उसे बोलते हैं अप्रयोजनभूत। अब जो है भूतकार तो हम नहीं होता था, अब उसमें भी दो हो गए। तो जो हमारी काम की नहीं हो उसको भी नहीं होना कहते हैं जगत में। क्या है तो, लेकिन हमारे काम की नहीं है, तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा बद्ध स्पष्ट है एक, और आत्मा अबद्ध स्पष्ट है एक। तो हमारे अबद्ध स्पष्ट है ये बात काम की है, और बद्ध स्पष्ट वाली बात काम की नहीं है, वो अभूता। अब काम की नहीं है और नहीं है में कितना फर्क है, देखो, है ना। अब हमने जो काम की नहीं थी उसको नहीं है शब्द का प्रयोग कर दिया, तो सारे झगड़े खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि आत्मा तो कर्मों से बना है और कर्मों ने जकड़ रखा है, तो वो कहते हैं कि ये बात अभूतार्थ है, माने नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माने ये बात तेरे काम की नहीं है, ऐसा ये वस्तु तो ऐसी है लेकिन तेरे काम की नहीं है, तेरे से संसार ही बढ़ाएगी, इससे तेरे को मुक्ति का मार्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए समझ गए ना, व्यवहार न मुक्ति के मार्ग में अप्रयोजन भूत है। अब ये भी लिखा समय सार नहीं, अहिंसात्मक आचरण के लिए प्रयोजन भूत है, सदाचार की सिद्धि के लिए प्रयोजन भूत है, स्वस्थ और परस्थिति का भेद इसी नए से होता है, यदि इस नए को नहीं मानेंगे तो स्वस्थ परस्थिति का भेद कैसे करेंगे। तो वो प्रयोजन भी है उसका, लेकिन यहां प्रयोजन कौन सा, उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति जिसे सीधा मोक्ष होना है, पर ये प्रयोजन की सिद्धि वो बिल्कुल बेकार है, ऐसा ही नहीं है कुछ जगत में। वो चीज हमारे काम की नहीं है लेकिन किसी के काम की नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। जिस चीज को हम रिजेक्ट कर देते हैं उसी को दूसरे प्राणी के बहुत काम की होती है। अपन मलमूत्र का सेवन करते हैं और सुअर उसे बड़े प्रेम से खाता है, तो अपने लिए वो अप्रयोजन भूत है और उसके लिए प्रयोजन भूत है। अंतर समझ में आया ना, तो सर्वथा प्रयोजन भूत नहीं है। तो कहते हैं कि बना है आत्मा और कर्मों ने छुआ है, इसमें क्या है, तो उन्होंने उदाहरण दिया। देखो अब पढ़ते हैं, है आपके पास किताब है, जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलिनी पत्र का जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से देखने पर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है सत्यार्थ है, तथापि जल के किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ असत्यार्थ है। आप जाने कमल का पत्ता जो होता है तो वो कमल पानी में ही पैदा होता है, और पानी में नहीं कीचड़ में, इसलिए उसका नाम है पंकज। पंकज नाम का अर्थ समझते क्या है, पंक माने कीचड़, और कीचड़ में जो पैदा हो उसे बोलते हैं पंकज। तो वो पानी में ही पैदा होता, पानी के बिना पैदा नहीं होता। और पानी जैसे तालाब में इनका रहता ना, जो और जो पेड़ पौधे पत्ते हैं तो ये तो ऐसा पानी तो नीचे से लेते होंगे लेकिन फिर भी पानी दिखता नहीं उनके सामने। लेकिन वो कमल के पत्ते को आपने कभी देखा हो, यदि वो पानी में से निकालो और बस ऐसे झटकार दो तो एकदम सूखा निकलेगा वो पानी। जैसे कि कागज डालो अपने कपड़े को डालो तो ये गीला हो जाता है, सुखाना पड़ेगा कि सुखाना पड़ेगा, लेकिन कमल का पत्ता भी गीला नहीं। तो बोलो कमल के पत्ते को पानी ने छुआ है कि नहीं छुआ है, सही है ध्यान से, कमल के पत्ते को पानी ने छुआ है कि नहीं छुआ है। तो सामने देखोगे तो कमल के पत्ते के नीचे पानी ऊपर पानी, वो पानी मतलब मोती के दाने जैसे चमकता है ना, आपने देखा होगा।
तो कहते कि उससे कहेंगे कैसे, यही कहेंगे कि हम बराबर छुआ है, डूबा हुआ है, कमल का पत्ता पानी में डूबा हुआ है, छुआ हुआ है, तो ये बात एकदम सफेद झूठ तो नहीं है ना है? लेकिन कहते हैं कि वो गीला तो नहीं हो गया, तुम्हारा प्रयोजन है कि गीला नहीं हो जाए, क्यों? तो वो गीला तो नहीं हो गया, तो कहते हैं कि नहीं गीला नहीं हुआ, पानी में डूबा रह करके भी गीला नहीं हुआ। दुनिया के बहुत से पदार्थ होते हैं जो पानी में डूबे रहते हैं तो गीले हो जाते हैं, ठीक है। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है, कीचड़ में सोना पड़ा हो तो वो गीला नहीं होता, तो उसके अंदर पानी सोखता नहीं है। इस जगत में सोने की कीमत क्यों है? उसके गहने बनाते हैं तो बहुत अच्छे लगते होंगे, इसलिए नहीं, इस सोने नाम की धातु की इतनी अधिक कीमत क्यों है? हीरे से भी ज्यादा कीमत का मतलब यह मतलब है ना कि कितने का कैरेट आएगा, कितने का भाव आएगा। सोना आपके पास है तो आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, आपका काम हो जाएगा, कहीं भी बिक जाएगा, और कोहिनूर को लेके सारे विश्व में चले जाइए, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। कीमत तो उसे कहते हैं जो ग्राहक सब जगह कीमत मिल जाए, जिसकी कीमत जहां हम खड़े हैं वहां मिल जाए उसे कीमती बोलते हैं। हीरा ऐसा कीमती नहीं है, सोना ऐसा कीमती है, इसलिए लोग सोने की कीमत है। गलता फिर पानी में गलता नहीं, पुराने जमाने में तो जमीन में गाड़ के रखते थे ना, किसी के पास बैंक के लॉकर तो थे नहीं, तो उसमें लोहा गाड़ो तो उसमें जंग लग जाती थी, सोना गाड़ो तो उसमें जंग नहीं लगती, पानी में रहो तो पानी छूता नहीं है, कीचड़ में लगाओ तो जंग नहीं लगती है, आग में जलाओ तो पानी जल जाता है, एक अपने कपड़े लत्ते भी जल जाते हैं, मकान भी जल जाता है, और सोना फिर कभी जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, और हमारे में ठंडा होगा तो फिर वैसे जैसा हो जाएगा। तो इसमें नष्ट नहीं होने की ताकत है, इसमें कोई चीज मिक्सर हो जाए तो और चीज में मिक्सर हो जाए तो उसे निकालना संभव नहीं है, खत्म होगी हमारे जल्दी, और इसमें से मेल निकाला जा सकता, कितने मेल हो जाए और तपाव तो सब निकल जाता है, और सोना वाला कोई शुद्ध स्वतंत्र हो जाए, मेला हो जाए तो शुद्ध किया जा सकता है। तो इसमें जो ये क्वालिटी है इसकी वजह से इसमें विश्व में ज्यादा इसकी कीमत है, और गहने तो इसलिए बनने लग गए, या तो जमीन में गाड़ के रखे या गले में बांध के रखे, करेंगे क्योंकि सुरक्षा के लिए, क्यों कहीं तो डाला नहीं जा सकता है ना है? हमारी एक बुढ़ी अम्मा थी 80 वर्ष की, तो आधा किलो सोना हमेशा पहन रहती, अब बहू में नहीं पहनती, वो पोती पोतियां नहीं पहनती, पोते की बहू में नहीं पहनती, अब वो पहने रहती। अरे अम्मा जी आपको बहुत शौक है कि बेटा तुम समझते हो क्या, तो जो मेरे गले में पड़ा है वो ही मेरा है, बेटे को दे दिया तो बेटा फिर वापस मिलेगा कि नहीं, बहू को दे दिया तो वापस मिलेगा कि नहीं, बेटी को दे दिया तो वापस मिलेगा कि नहीं, बैंक के लॉकर में रख दिया, अब तो बैंक के लॉकर से सही नहीं चले और कौन निकालने जाएगा, अब हम सहन करना आता नहीं, कैसे करना, जमीन में गाड़ देंगे कौन कब निकाल ले जाएगा, तो कुछ तो मेरे पास रहने दो, शौक वोक नहीं है, थोड़ी बहुत संपत्ति मेरे पास रहे कि जिसको देख देख करके बहू बेटे थोड़ी सेवा करें, उसकी कीमत इसलिए है। तो कहते जैसे कि वो कमल के पत्ते का स्वभाव है कि पानी में डूब करके भी नष्ट नहीं, इसमें कोई विकृति नहीं आई और कोई पदार्थ, तो अब उसे पानी ने छुआ या नहीं छुआ, तो कहते इस अभी फोटो लेंगे ना फिल्म बनाएंगे तो बराबर पानी ने छुआ है ऐसा दिखाई देगा, और विवेक की आंख से देखेंगे तो बिल्कुल पानी में पानी बिल्कुल जुदा है, उस पत्ते में प्रवेश नहीं किया है। ऐसे ही अपना आत्मा है, यदि बाहर से देखोगे तो कर्म से बराबर जकड़ा छुआ हुआ और बंधा हुआ दिखेगा, क्योंकि अब यहां से कहीं जा नहीं सकता, बंधन है क्या नहीं है, लेकिन आत्मा के स्वभाव की तरफ जाके देखेंगे तो उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है। पहले दिन कहा था ना, जैसे पानी को छूने का स्वभाव नहीं है कमल का, पानी का है लेकिन पानी कमल का दो ही तरह से स्वभाव होना चाहिए, तब वो जाकर के छू कह सकता है। और आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, इसलिए वो कोई भी पदार्थ कर्म जो पुद्गल है उसमें स्पर्श गुण है वो आत्मा को छू नहीं सकता, इसका नाम है अबद्ध स्पर्श। जब छू नहीं सकता तो बांधने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो अब कहते हैं कि वो जो कमलनी का पत्रा हम तुमसे पूछते हैं कि वो पानी से छुआ है कि नहीं, तो छुआ भी है नहीं भी छुआ, इसके अलावा आप क्या जवाब देंगे, समझ में है ना। अब ये कहते दोनों बातें सत्य हो गई, इसमें लिखा है कि यदि उसे पर्याय की तरफ से जाकर देखो तो वो डूबा है पानी में, ये बात सत्यार्थ है, लेकिन कमलनी के पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखो तो ये बात सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है ना। ये किस नाम आया, और सर्राफ के पास आया, भैया मुझे सोना बेचना है, तो कहा देख दाख के किसके साथ ये बोला कि तुम्हारा 5 तोला सोना है, 5 तोला सोने के भाव मिलेंगे, कह रही बोलो सर 10 तोला है, कि 10 तोला तो है लेकिन हमने घिसके देखा ना तो इसमें 50% खोट है, कहीं नहीं ऐसे नहीं मानता, तो ठीक है चलाओ भट्टी लगाए और उसी वक्त फटाफट उसमें डाल दिया, अरे मैंने सोने को जला दिया। घबराता क्यों है, कौन घबरा घबरो, क्योंकि अग्नि की ताकत ही नहीं कि सोने को जला दे, यदि आपका कुर्ता कोई डाल दे अग्नि में तो समझे, तो वो उसके स्वभाव के समीप जाके देखो तो आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी, चाहे वो पानी में डाले चाहे वो अग्नि में डाले चाहे कहीं भी डाले उसके स्वभाव के समीप, तो ऐसे कमल के पत्र के स्वभाव के समीप जाकर तो वो बात असत्यार्थ है। अब हमारे प्रयोजन की बात कौन है बोला, वो पत्ते को पानी में डूबा हुआ मानना हमारे प्रयोजन का है कि डूबा हुआ नहीं है ये मानना प्रयोजन का है। ऐसे आत्मा कर्मों के बीच में हमें दिखाई देगा, तो एक क्षेत्र अब यह संबंध है ना देह का और आत्मा का, और यहीं पर ज्ञाना वर्ण याद कर्म है, तो एक क्षेत्र में दोनों है तो ये अलग अलग कैसे दिखेंगे बोलो, इस आंख से देखने में जिन आकाश के प्रदेशों में हमारे आत्मा के प्रदेश हैं उन्हीं आकाश के प्रदेशों में कर्म के प्रदेश भी है, और एक निश्चित काल तक एक साथ रहने का भी उनका नियम है, एक क्षेत्रावा ग्राह संबंध क्षणिक एक क्षेत्रावग्राह संबंध है, तो ये देखेंगे ये सच्ची बात है। लेकिन उसी वक्त जिस वक्त वो कमल का पत्ता पानी में डूबा है उसी वक्त वो पानी से अलग है, ऐसे ही वो भगवान आत्मा जिस वक्त शरीर और कर्मों से बंधा है उसी वक्त वो कर्मों से नहीं बंधा है। क्या उसी वक्त वो नहीं बंधा है, क्योंकि बाद में नहीं बंधेगा इसका नाम नहीं है नये, फिर वो तो चरित्र की बात हो गई कि वो आत्मा को हम शुद्ध कैसे करेंगे, पत्ते को पानी में से निकाल के अलग कर दो, फिर वो बात नहीं है, तुम डूबे डूबे पानी में उसे छुआ नहीं है ऐसा दिखना चाहिए, कर्मों से बंधो अभी आत्मा तो अपने कर्मों से बंधा ही है, और जब वो अलग हो जाएगा तो फिर तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी, जब तो केवल ज्ञान हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष जाने के लिए तो सब समझना है, क्यों अलग करने के लिए तो समझना है कि अलग है, इसी वक्त ये निर्णय करना पड़ेगा, क्या इसी वक्त ये निर्णय करना पड़ेगा कि वो उससे अलग है, और इसमें श्रद्धा फिर ये जो अलग है वो अलग आत्मा में अपनापन स्थापित करना पड़ेगा, कि ये प्रक्रिया वो कर्ण लब्धि की प्रक्रिया होती है, फिर ये होती है, फिर वो होती है, वो कर्मानियोग वालों से समझ लेना। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो ये पादमी की लड़की है वो काशी बाल के लड़के से उसका संबंध तय हो गया, क्यों वो काशलीवाल कब हो जाएगी, होगी ना वो काशलीवाल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो, 7वां फेरा पढ़ते ही वो काशलीवाल हो जाएगी, है ना ऐसी रिवाज है ना, कि वो लड़की उसके दिन के बाद में वो काशलीवाल मानी जाएगी, और उसकी प्रक्रिया क्या है कि बरात आएगी और बाजे बजेंगे और लड्डू खाए जाएंगे और 6 फेरे पड़ेंगे, फिर 7वां फेरा पड़ेगा, और 7वां फेरा पड़ा और वो काशलीवाल हो गई, क्यों जी
वो अपने में से वो जो है ना पुराना बाप का घर, उस घर में से उसका एकत्व नहीं टूटे और अपने पति के घर में एकत्व नहीं आए, वो पादनी पने में एकत्व नहीं टूटे और कासली बाल पने में एकत्व नहीं आए, तो सात या 700 फेरे खा ले तो भी वो कासली बाल नहीं। क्यों? वो बनने के लिए कोई मंत्र से थोड़ी काम होगा। क्यों? उसे सोरवा थोड़ी पढ़ाना पड़ेगा बनाने के लिए। ये तो उसके मन के, उसके चित्त की बात है कि उसके चित्त में ये बात स्वीकृत होना चाहिए। क्या? और उसके चित्त में स्वीकृत हो जाए और साथ फेरे नहीं पड़े तो कभी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हम तो नहीं देखा आज तक। अरे सब अदालत में कितनी शादियां होती हैं, भागवत की लड़की लड़की करते हैं ना, है? तो फिर भी होते हैं पति पत्नी के? नहीं बोलो। वो उसमें कोई दम नहीं है, हाथ में बात में फेरे में। वो तो हमारी समाज की एक व्यवस्था है कि जिससे हम उसके चित्त में ये जमाते हैं कि बेटा अब तू पात्नी नहीं है, कासली बाल हो गई, खत्म। ऐसा मत करना इंदिरा नेहरू गांधी, तुम्हें तो गोद लेने जाना नहीं है, डबल डबल काय करो? तो नेहरू और गांधी एक साथ रह सकते हैं, बाप का नाम भी जोड़े और बेटे का नाम भी जोड़े, क्योंकि बाप की भी इज्जत है, बेटा भी इज्जत वाला है और दोनों की इज्जत चाहिए उसको। ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा। तो वो कहते हैं, सुनना ध्यान से, ज्ञान तो दोनों बातों को जानेगा। क्या जानेगा? ज्ञान जानेगा नहीं कि ये मेरे पिताजी हैं, मैं यहां पैदा हुई हूं, इसलिए मैं पापनी हूं, ऐसा जानेगा कि नहीं? लेकिन श्रद्धा में ऐसे ही इत्र अवध आत्मा कर्मों से बंधा है कि नहीं बंधा है, तो बंधा है इसको भी ज्ञान जानेगा व्यवहार में, और नहीं बंधा है इसको भी ज्ञान जानेगा। और उसी समय श्रद्धा वो नहीं बंधे वाले पक्ष को अपना लेगी, बस खत्म। वो प्रयोजन भूत है, इसलिए भूतार्थ है, इसलिए सत्यार्थ है। श्रद्धा प्रयोजन भूत को पकड़ती है, इसलिए वो भूतार्थ को पकड़ती है। उसमें आता ना एक गाथा आती है ना, भूतार्थ आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्माण जी, तू गाती है ना गाथा? हाँ, विद्वान जन भूतार्थ तज व्यवहार में बर्तन करें और भूतार्थ आश्रित मुनिवरो प्राप्ति करें निर्वाण की। आगे समझने के नहीं, व्यवहार में बर्तन करते रहो दुनिया। भाई तुमने व्यवहार को माना है ना, व्यवहार से बना है ना, तो व्यवहार में माना है तो व्यवहार लो। अब मोक्ष में कोई व्यवहार है ही नहीं, विवाही जी और साहू जी और बने जी और जमाई और जमान, ये सब व्यवहार तो यही संसार में है ना, तो व्यवहार है तो व्यवहार में रहो ना फिर आराम से। गलत तो कुछ नहीं है ना, तुमने व्यवहार को सत्य माना तो व्यवहार उपलब्ध होगा, और निश्चय को सत्य मानोगे तो निश्चय उपलब्ध होगा। तो मुक्ति के मार्ग में प्रयोजन भूत कौन है? भूतार्थ माने मुक्ति के मार्ग में प्रयोजन भूत, और प्रयोजन भूत माने जिसमें अपनापन स्थापित करना है। अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वो पादनी की काशी बाल तो होगी, लेकिन वो भी पादनी थी तो क्या नाम था, विमला कमलचंद पादनी, पूरा नाम ये था, गुजरात में से लिखो ऐसा लिखते हैं वो, अपने हिंदी में तो ऐसा नहीं चक्कर चलता है, उनका तो नाम ही पूरा तब होता है। क्यों ऐसा होता है? अब वो आज शादी होगी तो उस दिन से क्या हो गई हो, विमला सुरेश चंद कासलीवाल, कासलीवाल नहीं हुई अकेली, पर कासलीवाल तो हजारों लोग हैं, समझ में ना, उसने एकत्र स्थापित सुरेश चंद कासलीवाल ने किया। आत्मा तो बहुत है, उसने अपने आत्मा में अपने पति नामक है वो, तो जो कासलीवाल अपना पति है उसमें उसने एकत्र स्थापित किया है, तो अपने आत्मा में जिसने एकत्र स्थापित किया है वो उसे बोलते भूतार्थ। तो पढ़ता हूं देखो, जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलनी पत्र का जल से स्पर्श पर्याय की ओर से अनुभव करने पर देखने पर जल से स्पर्श होना भूतार्थ है सत्यार्थ है, तथा जल के से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखो, ऊपर ऊपर जो है वही दिखेगा। जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये तो हुआ उदाहरण, अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पर्शता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इस सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की इसमें यह है कि जब वो कर्मों से छूट जाएगा तब हम कहेंगे अबद्ध स्पष्ट है, पर अभी जब तक बंधा है तब तक कहेंगे बद्ध स्पष्ट है। ये बात यहां नहीं समझा रहे। अभी ये कह रहे कि ये जो सोना आया है जिसमें 50% खोट है तो 50% शुद्ध है, तो वो सोना 100% शुद्ध है कि 50% शुद्ध है? बोला अरे वो 50% तो मिलावट है, वो अलग पदार्थ है, मानो चांदी मिली है तो वो तो चांदी है। तो उसने वो एक तोला सोने में 50 आधा तोला सोना नहीं देखा है, उसने तो आधा ही तोला सोना देखा है। क्यों? उस सराफ ने ऐसा गिर करके देखा ना और कहा कि तेरे 5 तोले के दाम मिलेंगे, मतलब आधे भाव मिलेंगे, 10 तोला तुम तोलेगा तो इसके भाव जो 10,000 के भाव है उसकी जगह 5,000 के भाव मिलेंगे। तो ऐसी भाषा बोले है, ऐसी भाषा बोले इसमें आधा जितना तोलने में आएगा उससे आधे के पैसा मिलेंगे। बात तो दोनों का अर्थ एक ही है ना। तो वो ये कहे कि भाई साहब इसमें जितना सोना है उतना सोना, तो बाकी तांबा है कि पीतल है कि चांदी है, तो मान लीजिए कि 10 तोला सोने में 5 तोला चांदी है ना, कि हाँ है, तो मुझे 5 तोला सोने का भाव और 5 तोला चांदी का दे दो। अब तो न्याय है कि नहीं है? बोला हाँ जी सर जी, समझ ना क्या कह रहा हूं। अब तांबा हो पीतल हो गिरट हो तो मुझे 5 तोला की इसके भाव दे दो। कि नहीं भैया नहीं मिलेंगे, उसका भाव नहीं मिलेगा, और ज्यादा तुमने गड़बड़ करी तो वो निकलवाई के पैसा और लगेंगे दे पैसा तुमको देना पड़ेंगे, तो शुद्ध करेंगे ना तो उसमें खर्चा लगेगा ना 1,700 रुपया, तो दे भी तुम्हें देने पड़ेंगे, और वो जो मैल है जो मिलावट है वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, हमें भी नहीं मिलेगी, वो तो गल जाएगी, जल जाएगी, तो उसे तो जलने का स्वभाव है, सोने का नहीं है जलने का स्वभाव, इसलिए वो बचेगा। तो ऐसे ही भगवान आत्मा में अनादि से राजदेश मोह हैं, कर्मों से बधे हैं। क्यों? तो वो आत्मा और दोनों उस काल में वो आत्मा बिल्कुल शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार है, तो बिल्कुल वैसी कीमत, यहां वैसी क्या कि दो कि नहीं, फिर तुमको निकलवाई के पैसे और लगेंगे। वो निकलवाई के पैसा क्या है? इस सिद्धांत के साथ ध्यान। मान तो तुम अभी लो कि मैं तो वो हूं जो शुद्ध बुद्ध भूतास में से कहा गया है आत्मा, लेकिन तुम्हें यदि वो आत्मा पर्याय में पाना है, अभी तुम्हारे ज्ञान में तो आएगा, पर्याय में तो मिला हुए है, जो मनुष्य है तो मनुष्य है ही। क्यों? यदि मैं मनुष्य आदि पर्यायों से जुदा हूं, दूसरा बोल है ना, अभी आते उस पर आते हैं अपन, तो तुम मनुष्य मिट जाओगे क्या? सम्म दृष्टि हो गई मनुष्य मिट जाओगे? बोलो मिथ्या दृष्टि हो तो हम मनुष्य पर्याय को मैं मानता हूं ना, कि मैं मनुष्य हूं, देव हूं, नारकी हूं, दूसरा बोल है वो। तो तुम ऐसा मानते ही कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा मानते ही सम्मा दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन मनुष्य मिट जाओगे तो मनुष्य तो कब मिटोगे? जब मोक्ष में जाओगे, 14वें गुणस्थान तक मनुष्य नहीं मिटोगे, खाल में 14वें गुणस्थान तक मनुष्य नहीं मिटोगे। तुमको जगत में मनुष्य ही कहेंगे, अहम कहें तो ये कोई मनुष्य का नहीं है, समझे ना। तो ये मनुष्य बना तो चौदह कवन बोलते हैं ना, मनुष्य गति में चौदह गुण स्थान होते हैं, देव गति में चार गुण स्थान होते हैं, नर गति में चार गुण स्थान होते हैं, चंद्र गति में पांच गुण स्थान होते हैं। तो मनुष्य गति के है ना चौदह गुण स्थान तो पूरे, कि वो तो जब तुम आत्मा में अंतर्मुख से ज्यादा लीन रहोगे तब हो, तब हो जाएगा नहीं तब भी नहीं। फिर उसके बाद जब अघातिया कर्मों का काल पूरा होगा तब होगी, लेकिन उनको फकर नियम होंगे जब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा असली काम तो हो गया, अनंत सुख चाहिए था वो मिल गया, अब इस शरीर का संयोग है तो बना रहे, और दुनिया हमें मनुष्य कहे तो कहती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्यों उन्हें वो जाने की जल्दी नहीं है। इस संदर्भ में एक बात बहुत मर्म की है जो सोचने की है, कि हम सब लोग निरंतर जो प्रयत्न करते हैं, हम जैसे पंडित उपदेश भी देते हैं वैसे करने की, लोग भी देते हैं, जितना भी पुरुषार्थ हम करते हैं वो सब संयोगों को बदलने का करते हैं, करते हैं। लेकिन वो तो ऐसा होगा, कौन सा बैंक है वो, क्या है तुम्हारा हसरत भाई, तुम कौन से बैंक में कराओगे जिसके भाव शेयर खरीदवाओगे जिसके भाव कभी कम नहीं होंगे, क्यों डबल ट्रिपल ही होंगे, डबल ट्रिपल होंगे, सब पहले ही दिन खत्म हो जाएंगे, डबल होने का चक्कर ही नहीं रहेगा, पहले दिन खत्म करने के लिए दे रहे कि डबल ट्रबल दे रहे, नहीं दे तो बिजनेस है, ये मंदिर में बिजनेस मत लाओ, समझने में क्या कहना चाह रहा हूं, हम ये समझा डबल हो जाएगा चौगना हो जाएगा तो तुम परीक्षा छुड़ा रहे कि पदरी से जुड़ाने की तरकीब बता रहे, ये बिजनेस की ट्रेनिंग है कि काय की ट्रेनिंग है, ये बहुत बुरी चीज है, इसलिए इसे छोड़ देना चाहिए, क्यों ये क्या है। तो ये कहते हैं कि हम जो संयोगों के बदलाव में ही सारा प्रयत्न करते हैं, संयोग मालूम कैसे मिलते हैं, अघातिया कर्मों की वजह से, अघातिया कर्मों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, अघातिया कर्म चारों के चारों मौजूद रहते हैं तो तुम्हें केवल ज्ञान हो जाता है, अनंत सुख हो जाता है। जिसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम्हारा सारा पुरुषार्थ उन अघातिया कर्म के उदय में होने वाले संयोगों को बदलने में जाता है, क्यों ये अनुकूल प्रतिकूल स्त्री पत्राधिक नहीं है, ये मकान खराब जगह है अच्छा मकान आ जाए, ये सब संयोग है ना, ये तो सब पुण्य पाप के अधीन है। और हमारा सारा प्रयत्न यानी हमें किसी को भी राग कम हो जाए, द्वेष कम हो जाए, मिथ्यात्व चला जाए, क्यों जाना बनी कम, इसका किसी को कुछ भी नहीं है, घातिया कर्म के उदय से जीव आत्मा में विकृति पैदा होती है, अनंत दुख घातिया कर्म के उदय में होने वाले संयोग और संयोगी भावों में से हुआ है दुखी। लेकिन हमारे 24 घंटे के प्रयत्न सुबह से शाम तक धंधे के पानी के खाने के पीने के, अब धर्म में भी उसमें शामिल हो गया, सारी जिंदगी गुरुदेव क्यों एक से चले गए, अरे हमने तुमने ये शुरू कर दिया कि दुगने हो जाएंगे तिगने हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, बोलता हूँ आपको सच्चे दिल से, सास पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, व्यवस्था से धर्म नहीं, व्यवस्था से धर्म को विरुद्ध बोलने की जरूरत नहीं है, आप बिना बोले ही चौगना आएगा, कोई कमी भी नहीं रहने वाली है, क्यों हर्षद भाई ने कुछ बोला तो इसी वजह कुछ आपको देने का भाव ज्यादा बड़ा है क्या, धोखा है, हमें धोखा होता है कि उसकी वजह से भाव बढ़ गया होगा और पैसा मिल जाएगा, ये तो संयोग है, संयोग जिन्हें बदलने के लिए तीर्थंकर नहीं केवली भगवान ही प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि मैं पूछता हूं कि उन्हें मोक्ष जाने की जल्दी नहीं है, क्यों कर दे रहे आघातिया कर्मों में थोड़ी स्थिति कम कर ले रहे, विचार करना आप गंभीर सा से, स्वर्ण में व्यवस्था नहीं होती थी गुरुदेव के जमाने में, पैसे की कोई कमी रहती थी, पैसा बरसता नहीं था, भ्रम है हमारा, ये निकाल लेना चाहिए चित्त से, ये संयोगों के बदलने के लिए
तीर्थंकर केवल ज्ञानी भी प्रयत्न नहीं करते, और हमारा सारा प्रयत्न संयोगों की बदलने की तरफ है। अब ऐसे काम लोग देते हैं संयोगों को बदलने के लिए, कि यहां तो अभी एक कहानी काली कलू की कहानी, पत्नी को छोड़ दोगे तो स्वर्ग में जाओगे तो 32 तो कम से कम मिलेंगी, क्यों? इसलिए छोड़ाना है कि 32 सुंदर से सुंदर मिले, कि ये चीज अच्छी नहीं है, ब्रह्मचर्य अच्छी चीज है, इसलिए छोड़ाना है, है? क्यों? क्या फर्क रह गया फिर हमने और सामने वाले में? काय को अलग है, इस मंदिर की क्या जरूरत थी फिर? जो घातिया कर्मों में भी ज्ञानावरण दशनावरण और अंतराय के लिए कुछ प्रयत्न नहीं करते, सिर्फ मोहिनी कर्म बंध का कारण है, बंधे एक राग आदि अशुद्धों के योग से। हमारा संसार का निमित्त जो है वह केवल मोहिनी कर्म है, और मोहिनी कर्म से या तो मिथ्यात्व है या कसाएं हैं। सात मोहिनी माने कसाएं और दर्शन मोहिनी माने मिथ्यात्व। सारा पुरुषार्थ हमें मिथ्यात्व को टालने में लगाना चाहिए। तो भूतार्थ कौन है? मेरा मतलब सुना ना, तो भूतार्थ जो है वो उस पर हमारा वजन होना चाहिए ना। वहां प्रयोजनभूत कौन है? सम्मा दर्शन की प्राप्ति प्रयोजनभूत है कि पुण्य बिंद करना प्रयोजनभूत है? बोलो कि पुण्य पाप का दोनों का अभाव करना प्रयोजनभूत है? अदा सोलस कारण गुण करे हरे चतुर गति बास, और पाप पुण्य सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। यहां कहते हैं कि देखो वो तुम मनुष्य हो ना, अब तुम ये मान लोगे कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूं। जो पढ़ता हूं वो बोल भी पढ़ता हूं, जैसे कुंडा घड़ा खप्पर आदि पर्यायों से मिट्टी का अनुभव करने पर अन्यत्व वे अन्य अन्य हैं, जुदे जुदे हैं, यह भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्री भेद रूप न होने वाले एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, सत्यार्थ है, असत्यार्थ है। यानी एक मिट्टी से बने, क्या क्या बना के अब नाम दिए ना, कुंडा घड़ा खप्पर से देखो देगी, तो अभी ये पर्याय की दृष्टि से देखने से अलग अलग है। क्यों? कि मान लीजिए कि हमने अब स्टील ले लो, अपन मिट्टी को एक तरफ रख दो, मिट्टी के रहे नहीं घरों में, अब स्टील का गिलास है, स्टील की कटोरी है, स्टील की थाली है, ठीक है ना। तो अभी हमको अभी पानी पीना है तो कैसा स्टील स्टील तो ये कही है, तुम थाली लेके आ जा, क्यों? तो कहेंगे भैया थाली अलग है और कटोरी अलग है और गिलास अलग है, बोलेंगे कि नहीं? बोलना चाहिए ना, क्योंकि वो प्रयोजन सिद्ध नहीं हो, वहां वो प्रयोजन है कि हमें एक पानी पीना है, खाना खाना है तो थाली प्रयोजन है, तो लौकिक दृष्टि से वो प्रयोजन भूत है। लेकिन जब सोने का मामला हो तो हमारी संपत्ति की दृष्टि से, चाहे वो हार के रूप में हो, चाहे अंगूठी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे दली के रूप में रखा हो, बिस्कुट के रूप में रखा हो, तो वो सोना प्रयोजन भूत है ना? तो वो जब वो सोना हार में बन गया, कड़ा कड़ा बन गया, तो वो सोना नहीं रहा क्या? अब तुम्हें हार देखना है कि सोना देखना है, इतनी सी बात है। तो सोना देखना है तो कहते ऐसे वो आत्मा मनुष्य बन गया, अब उसी समय तुम्हें आत्मा देखना है कि मनुष्य देखना है? बोले सम्मा दर्शन आत्मा के देखने से होगा कि मनुष्य के देखने से होगा? तो ये कहते हैं कि मनुष्य जब है तब तुम उसे मनुष्य नहीं देखकर आत्मा देखो, ऐसी दृष्टि एक है, ऐसा नय है एक शास्त्र में, समय सार में। वो कहते उस नय से तुम्हें देखना बता रहे, ये कह रहे कि तुम्हें हार में अंगूठी में सोना देखना सिखा रहे। देखो अब इसको जरा और अच्छी तरह से समझे कि अपन बाजार में हार खरीदने गए, अंगूठी खरीदने गए, तो जब हम खरीदते हैं तो हमें वो सोने की जो है ना, सोने का दाम देना पड़ता है और वो हार की बनवाई का दाम भी उसमें हमको देना पड़ता है, और मुनाफा तो अलग बात, जाने दो उसे,
लेकिन गड़वाई भी उसके ऊपर कीमत में शामिल होती कि नहीं होती, होती है ना। अब हम वो ही हार फिर देखने जाए सर आपके यहां, तो सोने की कीमत मिलेगी, गड़वाई की कीमत नहीं मिलेगी, क्योंकि सर्राफ सोना खरीदता है और हमने हार खरीदा। हारा कौन? क्यों? वो परमानेंट वैल्यू की चीज की कीमत देगा। आप सुनिए ना, वो हार के आकार की कीमत नहीं देगा। तो मनुष्य तो आकार है कहते हैं, समझिए ना। तो मनुष्य पर्याय मनुष्य नहीं है, वो हार उस वक्त बिल्कुल ही झूठा हो या हार हो ही नहीं तो वो बात नहीं है, समझे ना। हार हो ही नहीं ऐसी बात नहीं है, हार है सत्यार्थ है ये बात। मेरे कहने का मतलब एकदम झूठा लाल जैसे बन गया तो वैसा नहीं है मामला, यदुवीर सिंह के सिर जैसा नहीं है। वो तो मनुष्य है, वो हार है, समझे ना। और तुम खरीदने जाओगे तो उसकी कीमत तुम्हें लगेगी, लेकिन उसी वक्त वो सोना भी है। हार बन जाने से सोनापन नहीं मिट गया, तो ये जीव का मनुष्य बन जाने से, मनुष्य होने से जीवपना नहीं मिट गया, जीवत तो खत्म नहीं हो गया, ख्याल में आया ना। वो भी वहां पर उसी ताकत से बैठा है। अब इतनी सी बात है कि हार जो है ना ऊपर से दिखता है और सोना तो अगला शराब को दिखता है, ना। अरे इसको ऐसे देखो कि घर में चार बहुएं हैं और चारों बहुओं के पास अपने हार और सब बना बनू के गहने दे दिए। चार किलो सोना अपने पास था तो एक एक किलो सोना का गहने बना के चारों बहुओं को दे दिए, चढ़ा दिए थे, चढ़ा देते थे ना शादी में। अब उनके पास है, उनको पूछो क्या, हाँ मेरे पास हार है, कंगन है, ये है वो है, कभी नहीं कहेगी सोना है। और बहुओं के पास है, ससुर जी से पूछो कि तुम्हारे पास कितना, मेरे पास चार किलो सोना है, जबकि एक अंगूठी भी हाथ में नहीं। लेकिन वो बहुओं को गहने दिखते हैं, समझे ना, और ससुर को सोना दिखता है, और वो भले ही उसके हाथ में नहीं हो लेकिन वो संपत्ति उसकी है, ख्याल में है ना। जब वो सोने की जो कीमत है उससे उसकी बाजार में इज्जत है, ख्याल में है ना। तो इसके बाद इतना इसकी बहुएं इतना सोना गले में डाल के घूमती हैं तो ससुर की नहीं इज्जत बढ़ती है, अगली बहुओं की नहीं बढ़ती, तो होता क्या ना, ख्याल में आएगा बात। तो उसकी दृष्टि सोने पर है तो वो सम्यक दृष्टि है, ससुर की दृष्टि हार पर है वो मिथ्या दृष्टि है, इतनी सी बात है। मनुष्य आदि पर्यावरण पर जिसकी दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है, और सरकारी जो भगवान आत्मा हर पर्याय में जो मौजूद है उत्तर जिसकी दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि है।